ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 7 श्लोक नंबर ऐसे तो 49 था, जिसमें एक दो लाइन का तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है, ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है 51 और 52 नंबर श्लोक। न अलम द्विजत्वं देवत्वं ऋषित्वं वा असुर आत्मजा प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृतं न बहुज्ञाता न दानं न तपः न इज्या न शौचं न व्रतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरिः अन्यत् विडम्बनम्। नालं द्विजतं देवत्वं ऋषित्वं वासुरात्मजः प्रेरणाय मुकुन्दस्य न वृतं न बहुज्ञता न दानं न तपो नेज्या न शौचं न व्रतानि च प्रीयते अमलया भक्ता हरे अन्यद विडम्बनम्। नालं द्विजत्वं देवत्वं ऋषित्वं वासुरात्मजः प्रेरणाय मुकुन्दस्य न वृतं न बहुज्ञता न दानं न तपो नेज्या न शौचं न व्रतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरेरन्यद् विडम्बनम्। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा पतित पावन महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ना नहीं अलम पर्याप्त द्विजत्वम अत्यंत पूर्ण एवं योग्य ब्राह्मण होना देवत्वम देवत्व ऋषित्वम साधु पुरुष होना अवा अथवा असुर आत्मजा। हे असुरों के वंशजों, प्रीणनाय प्रसन्न करने के लिए मुकुंदस्य भगवान मुकुंद का न वृतम बुरा आचरण न नहीं बहुज्ञता पांडित्य न न दानम दान न न तपः तपस्या न न तो इज्जा पूजा न न तो शौचम स्वच्छता न व्रतानि न व्रतों का पालन च भी प्रियते प्रसन्न किया जाता है। अवलया निष्कलंक भक्त्या भक्ति द्वारा हरे हे भगवान। अन्यत अन्य वस्तुएं विडम्बनम मात्र दिखावा। अनुवाद मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिए। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, तुम लोग न तो पूर्ण ब्राह्मण देवता या महान संत बनकर नहीं सदाचरण या प्रकांड ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हो। इनमें से किसी भी योग्यता से भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। नहीं दान तपस्या यज्ञ शुद्धता या व्रतों से उन्हें कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। भगवान तो तभी प्रसन्न होते हैं जब मनुष्य उनकी अविचल अनन्य भक्ति करता है। एकनिष्ठ भक्ति के बिना सब कुछ दिखावा मात्र है। कृपा करके इस पवित्र अनुवाद को आप लोग मेरे पीछे दोहराइए। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, तुम लोग न तो पूर्ण ब्राह्मण देवता या महान संत बनकर नहीं सदाचरण या प्रकांड ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हो। इनमें से किसी भी योग्यता से भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। नहीं दान तपस्या यज्ञ शुद्धता या व्रतों से उन्हें कोई प्रसन्न कर सकता है। भगवान तो तभी प्रसन्न होते हैं जब मनुष्य उनकी अविचल अनन्य भक्ति करता है। एकनिष्ठ भक्ति के बिना सब कुछ दिखावा मात्र है। मैं श्लोक नंबर 50 का अनुवाद पढ़ रहा हूँ कि देवो असुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्वे वा भजन मुकुंदस भव भजन मुकुंद चरणम स्वास्ते मानस्याद यथा वयम। यदि देवता असुर मनुष्य यक्ष गंधर्व या अन्य कोई इस संसार के भीतर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की सेवा करता है तो वह हमारे ही समान कल्याण का भाजन हो जाता है। प्रहलाद महाराज यह उपदेश अपने मित्रों को दे रहे हैं और लास्ट में प्रहलाद महाराज इस निर्णय पर पहुंचे हुए हैं और यह सिखा रहे हैं अपने मित्रों को कि हे मेरे मित्रों, चाहे आप लोग असुर वंश में क्यों न जन्मे हो, लेकिन अगर मेरे जैसा आचरण करोगे तो निश्चित एक दिन आप लोग भी मेरे जैसा भगवान के प्रिय बन जाओगे। इस श्लोक में 49 नंबर में कहे हैं प्रहलाद जी कि मुकुंद मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की सेवा करता है तो वह हमारे, प्रहलाद महाराज अपने लिए कह रहे हैं कि हमारे जैसा या हमारे ही समान कल्याण का भाजन हो जाता है। प्रहलाद जी का कहने का उद्देश्य यह है कि हे मेरे मित्रों, अगर मेरे जैसे आचरण अगर आप लोग करने लगोगे, या अर्थात मैं जैसे कह रहा हूं उन बातों का अगर आप लोग अनुसरण करोगे तो निश्चित एक दिन हमारे जैसा भगवान के कृपा का भाजन बन पाओगे। एक दूसरा अर्थ यह भी है इस श्लोक का, अगर इस प्रकार हमारे जैसा अगर भक्ति के पथ को अगर आप लोग नहीं स्वीकार करते हो तो भगवान मुकुंद के चरणों की प्राप्ति आप नहीं कर पाओगे। तो इससे स्पष्ट यह झलकता है कि बिना भगवान की शरणागति लिए बिना जीव का कोई कल्याण नहीं। भागवत के दसम स्कंद में एक श्लोक में बताया गया है कि सर्वात्मना शरणम गते हरित मुकुंदम, सभी चीजों को छोड़ करके केवल एकमात्र मुक्ति के दाता भगवान मुकुंद के चरण कमलों के जो शरण ग्रहण कर लेता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार के ऋण हो या किसी भी प्रकार के वो कर्ज से अपने आप को छुड़ा लेता है। हर जीव के ऊपर कुछ न कुछ ऋण है, देवताओं का ऋण है, पितरों का ऋण है, भगवान का ऋण है, उन ऋण से हम उत्तीर्ण कैसे होंगे? तो केवल मुकुंद मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों का अगर हम शरण ले लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा उद्धार हो जाता है। यहाँ प्रहलाद जी पिछले श्लोक में कह रहे हैं कि असुर कुल में पैदा हो या देवता कुल में पैदा हो, यक्ष गंधर्व किन्नर किसी भी वंशज में अगर कोई भी जीव पैदा हुआ हो, सबसे महान गुण यह है कि अगर वो भगवान के शरण को स्वीकार कर लेता है, मुकुंद के चरणों में अगर अपना प्रेम स्थापित करने का प्रयास कर लेता है तो निश्चित वो हमारे जैसा कृपा का भाजन बन जाता है। अब उसी के संबंध में और प्रहलाद महाराज विशेष रूप से वर्णन कर रहे हैं आज के जो ब्लैक बोर्ड पर श्लोक लिखा हुआ है उन श्लोकों में कि हे मेरे मित्रों, किसी भी गुणों के ऊपर भगवान की भक्ति निर्भर नहीं करती है, किसी जाति विशेष पर या ज्ञान पर भक्ति निर्भर नहीं करती है। श्री श्री राधा राधिका रमण भगवान की भक्ति हमारे दान देने पर निर्भर नहीं करती है, हमारे तपस्या पर निर्भर नहीं करती, व्रत पर निर्भर नहीं करती है। इन सब चीजों का उद्देश्य केवल एकमात्र होना चाहिए, संसिद्धि हरितोषणम, भगवान की प्रसन्नता। हम जिस कार्य को कर रहे हैं उन कार्यों से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं इसकी तुलना करके देखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं इन व्रत से हमारे गुरु और हमारे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं हमारे आराध्य देव की नहीं। एक एक शब्द इससे पहले वाले श्लोक में प्रहलाद जी कहे हैं कि स्यात् जथा वयम्, जैसे मैंने भक्ति के अंगों को मैं स्वीकार किया या मेरी भावना भक्ति से ओतप्रोत हो चुकी है, उसी प्रकार अगर तुम उन भावनाओं में अपने को रमण करते हो, डुबो देते हो, तो निश्चित ही मेरे जैसे तुम कृपा के पात्र बन जाओगे। अब आगे इन श्लोकों में बता रहे हैं कि न अलम द्विजत्वम, द्विजता को प्राप्त कर लेना अर्थात ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेने से हमारी भक्ति पूर्ण नहीं हो गई। ब्राह्मण बन जाना ही अपने आप में भक्ति में पूर्ण नहीं है। ब्राह्मण अपने गुणों का या अपने ब्राह्मणत्व के गुणों से प्राप्त फल श्रुति को जब तक पूर्ण भगवान के चरणों में निवेदित नहीं करता है तो उस ब्राह्मणत्व से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। आगे का शब्द है देवत्वम, देवताओं के गुण को प्राप्त कर लेना अर्थात अच्छी सुखद संपत्ति की स्थिति को प्राप्त कर लेना, ज्यादा ऑपुलेंस में रहना, इस स्वभाव से भी हम भगवान के भगवत्ता को या भगवान की भक्ति को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा शब्द है ऋषित्वम, साधुता को, मात्र साधु का भेष दिखाने मात्र से या साधु का स्वरूप केवल बना लेने से ही भक्ति में यह काफी नहीं है। उस भेष का सदुपयोग कितना हम भगवान को खुश करने में कर रहे हैं इस पर निर्भर करता है। हम लोग तथाकथित साधु अपने को हम लोग कहते हैं, लेकिन इन श्लोकों के शब्दों के गहराई में डूबने के बाद पता चल जाता है कि हम लोगों की स्थिति क्या है। या वसु या अन्य किसी भी वंशज में जन्म लेने पर यह निर्भर नहीं करती है। प्रहलाद जी का कहने का एक ही लक्ष्य है कि हे मेरे मित्रों, बहुत प्रयास के द्वारा इन संसारिक इन भौतिक गुणों को प्राप्त किया जाता है, लेकिन इनसे कम परिश्रम में ही हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। आप सोचिए, किसी भी डिग्री को प्राप्त करने में, किसी भी नौकरी को प्राप्त करने में, किसी भी धन को प्राप्त करने में कितना परिश्रम करना पड़ता है। प्रहलाद जी का कहने का लक्ष्य एकमात्र यही है कि केवल अपने आप को तुम कह देते हो या उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हो तो तुम्हारे अंदर ये सारी जो योग्यता मैं वर्णन कर रहा हूं अपने आप आ जाता है, पीछे पीछे दौड़ता है भक्तों के। भक्ति के अंदर ये जो भी गुण यहां बताए गए हैं, तपस्या, व्रत, दान, ब्राह्मणत्व, द्विजत्व, ऋषित्व, जितने भी गुण यहां प्रहलाद जी गिनती करा रहे हैं, ये सारे एक ही चीज पर निर्भर करते हैं, वह है अनन्या भक्ति। कि भगवान हमारे हैं और मैं उनका हूं, यह भाव अगर दृढ़ता से हमारे हृदय में छाया हुआ है और उन्हीं भगवान को प्रसन्न करने में हमारे सारे प्राणई अर्थ धिया वच, इसी अध्याय के अंदर श्लोक नंबर शायद 20 है, उसमें प्रहलाद जी बताते हैं कि जिस व्यक्ति का प्राणई मतलब आत्मा धिया बुद्धि अर्थ धन और वाच वाणी इन चारों की सदुपयोगिता केवल भगवान को प्रसन्न करने में वो लगा रहा है तो निश्चित रूप से ही मेरे जैसा वो कृपा का भाजन होगा। प्राणई अर्थ धिया वाच, अगर यह देखा जाए तो वास्तव में यह श्लोक केवल गुरु ससुर या ससुर जया शब्द के ऊपर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, इस श्लोक को उन्होंने कोट किया है। ऐसे यह श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु का, रूप गोस्वामी ने लिखा है कि जिस व्यक्ति का प्राण मतलब आत्मा कह लीजिए, कभी कभी आत्मा शब्द का अर्थ शरीर से भी लिया जाता है, कि शरीर जो भक्ति के पथ पर चलने का प्रयास कर रहा है उसको भी सांकेतिक भाषा में आत्मा कभी कभी काल को कहा जाता है। आत्मा अर्थ धिया मन वाचा जिसको कर लीजिए, कि जिसकी वाणी, जिसका धन, जिसकी बुद्धि और जिसका आत्मा मतलब इस शरीर, ये चारों केवल भगवान को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, तो मेरे जैसे भक्ति के साधनों में उत्प्रोत हो जाएगा। कहने का आशय है कि अगर इस प्रकार के बताए हुए पथ पर अगर नहीं चल रहा है, अगर इन चारों की सदुपयोगिता, रूप गोस्वामी के भाषा में वो लिखते हैं, अगर वो भगवान को प्रसन्न करने में नहीं उपयोग में लग रहा है, तो ये समझ लीजिए कि उसका जीवन खतरे में है, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। स्थिति यह है कि हम लोग थोड़ी सी भी अगर कोई चीज कर लेते हैं तो हम लोग अनुभूति यह करते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन भागवत के अंदर एक श्लोक में लिखा हुआ है कि तीन चीज में कभी संतुष्टि नहीं करनी चाहिए। दान देने के बाद यह अनुभूति नहीं करना चाहिए कि मैंने बहुत दे दिया, विद्या प्राप्ति कर लिया इससे भी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, और भगवान की भक्ति हम लोग थोड़ी सी करते हैं तो संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने बहुत कर लिया, इतने से तो भगवान खुश हो ही जाएंगे। इन तीन चीजों से कभी संतुष्टि की अनुभूति नहीं करनी चाहिए। उत्तरोत्तर कहने का मतलब यह है कि क्रमानुसार इसको बढ़ाते ही रहना चाहिए, तब अपने आप को मनुष्य अनन्या भक्ति की स्थिति में, न अन्य इति की स्थिति में अपने को प्राप्त कर सकता है। अनन्य भक्ति का अर्थ ही है कि भगवान केवल हमारे हैं, ये भाव जो भाव गोपियों का दृढ़ था कि कृष्ण मेरे हैं, बार बार भागवत के दसम स्कंद में कहती है कृष्ण मेरे हैं, इसमें भी अपने आप में जो मेरे हैं यह भक्तिमय अहंकार है, अपनत्व की भावना है कि वो मेरे हैं। अब यह नहीं कोई कह सकता है कि यह तो झूठा अहंकार है, यह सच्ची अहंकार है कि गोपियों के कृष्ण हैं, यह झूठा अहंकार नहीं। भक्तों के भगवान हैं यह सत्य अहंकार है, इसको हम अहंकार नहीं कह सकते कि यह झूठा अहंकार है। वास्तविक में भक्त के भगवान ही है और कोई नहीं है। प्रीणनाय मुकुंदस्य, मतलब भगवान का प्रिय बनने के लिए केवल एक ही तरीका है कि मुकुंद के नजदीक जो जाने के साधन हैं उनको हम अपने जीवन में उतारें। प्रीणनाय, जो प्रिय बनने के साधन है जिससे हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं, उन साधनों को हम अपने जीवन में उतारें। ना ना शब्द कहकर के प्रहलाद जी यह कह रहे हैं कि भैया अब दूसरे काम में मत लगो, मत लगो, मत लगो, यह तुम्हारे काम नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। कितना बार इन श्लोकों में ना ना शब्द का सदुपयोग हुआ है कि दूसरे के पास या इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़ो कि हम दान दे देंगे तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे, हम विद्वता को प्राप्त कर लेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। इससे भगवान खुश होने वाले नहीं है। प्रियते अमलया भक्त्या, अगर भगवान खुश भी होंगे तो जो अमलया भक्ति, जो अमल भक्ति करेगा निष्कपट भाव से, यह कह लीजिए कि द्वेष की भाव से न युक्त होकर पवित्र शुद्धता भक्ति जो करता है वही भगवान का प्रिय बन पाएगा। जैसे कल के श्लोक में आया था कि भक्तों के आत्मा प्रिय और ईश्वर केवल हरि है, भगवान है। कल के श्लोक में जीतामृत प्रभु ने बताया था, वास्तविक स्थिति यह है, एक हरि शब्द का दूसरा अर्थ बंदर भी होता है, जो दूसरे के घर से कुछ चुरा ले। वैसे ही भगवान जो हैं अपने भक्तों के पाप रूपी जो भावनाएं हैं उसको हरण कर लेते हैं, उनका स्वभाव है। जैसे जीतामृत प्रभु ने कल एक श्लोक कोट किया था कि जैसे आग का स्वभाव है जलाना, हरिरित शरम द्वयम, जैसे आग का स्वभाव है किसी भी वस्तु को जला देना, वैसे ही हरि का स्वभाव है कि जो भक्त उनके भक्ति पथ पर चलने का प्रयास करता है, चलता है, उसके सारे पापों को हरण करता है, इसलिए उनको हरि कहा जाता है। हरि हरत पापानि दुष्ट चीतय रपि स्मृतः अनिच्छम अपि संपृष्ट दहत्य एव ही पावक, क्योंकि आग का स्वभाव है वो जलाएगा। वैसे ही भगवान की स्वाभाविक स्थिति है कि जो उनके शरण में जाएगा, जो उनके पास जाएगा, जो उनकी भक्ति करेगा, उसके पाप को हरण करेंगे। इसलिए जो भगवान का प्रिय बनना चाहते हैं उन्हें अमलया भक्ति, शुद्धता भक्ति के पथ को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। अगर इन सब चीजों को केवल कर रहा है, दान में, तप में, तपस्या में, व्रत में अपने आप को उलझाया हुआ है, और जो भक्ति का मेन साधन है उन चीजों को नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो फंस जाएगा। विडंबनम शब्द लास्ट में आया है श्लोक के, कि इन सब दिखावा से हरि के अनंत जो भक्त है, प्रिय भक्त है, अनन्य भक्त है, वो नहीं तुम बन पाओगे। ये बाह्य कारण है, दान देना, तपस्या करना, व्रत करना, विद्वता प्राप्त करना, यह अंग हो सकते हैं, लेकिन मुख्य स्थिति यह है कि अगर हम भक्ति करते हैं तो ये सारे योग्यता अपने आप में आ जाती है। भागवत के अंदर गुरु की प्रशंसा में एक श्लोक लिखा बताया गया है कि जो केवल गुरु को प्रसन्न कर लेता है तो ऐसे भगवान के अंदर कोई भी गुण नहीं है जो भक्त के अंदर न आ जाए। भगवान अपने आप को भक्ति से भक्त को दे देते हैं तो गुण कहां बाकी रह गया, जो अपने आप को ही जिसने दे दिया तो बाकी कहां रह गया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं प्रहलाद जी के भाषा को, हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, तुम लोग न तो पूर्ण ब्राह्मण देवता या महान संत बनकर, नहीं सदाचरण या प्रकांड ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हो। इनमें से किसी भी योग्यता से भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं, नहीं दान, तपस्या, यज्ञ, शुद्धता या व्रतों से उन्हें कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। भगवान तो तभी प्रसन्न होते हैं जब मनुष्य उनकी अविचल अनन्य भक्ति करता है। हम लोगों की स्थिति क्या है, अविचला भक्ति है ही नहीं। कभी इस गुरु के पास, कभी उस गुरु के पास, कभी यहां, कभी वहां, कभी शास्त्र का अध्ययन, कभी ये सुन लो, कभी वो सुन लो। गंगा किनारे गंगादास, जमुना किनारे जमुनादास, इससे कुछ मिलने वाला नहीं। प्रभुपाद का बुक्स और एक ही ग्रंथ केवल श्रीमद् भागवतम अपने आप में पूर्ण है, जो सब कुछ दे सकता है, क्योंकि भागवत के महात्म्य पहले ही भगवान ने ब्रह्मा जी को कह दिया कि किम श्रुतै बहुभिः शास्त्रैः नाना शास्त्र पुराणैः एकम भागवतम शास्त्र मुक्तिदाने न गर्जते। भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो घोषणा करके कहता है कि केवल मुझे पढ़ लोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। किम श्रुतै बहुभिः शास्त्रैः, तुम बहुत से शास्त्रों को सुनने के चक्कर में क्यों पढ़े? ये अकेला अपने आप में पूर्ण है, लेकिन हम लोग सोचते हैं ज्यादा ज्ञान का प्रदर्शन करना है इसलिए ये शास्त्र पढ़ ले, वो पढ़ ले। कुछ भी पढ़ने से जब तक भक्ति के मूल जो जड़ है वहां नहीं पहुंचते, तो ज्यादा श्लोक पढ़ने से या ज्यादा अन्य शास्त्रों का उदाहरण देने से हम भगवान के प्रिय नहीं बन पाएंगे। ये चीज इनके पीछे केवल एक ही लास्ट उद्देश्य है, भगवान को प्रसन्न करना। और भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं तो अपने आप को भगवान ने बताया है प्रहलाद महाराज। इससे आगे वाले अध्याय के अंदर अध्याय नौ के अंदर शायद 50वां श्लोक है, उसके अंदर प्रहलाद जी कहते हैं नृसिंह भगवान से कि नृसिंह देव, जो व्यक्ति 6 काम करता है वही आपका प्रिय बन पाता है, वही आपको प्रसन्न कर सकता है। अर्थात जो ये 6 काम नहीं करता है वह आपको खुश नहीं कर सकता। कहते हैं कि तत्ते हरतम नमः स्तुति कर्म पूजा, स्तुति कर्म तत्व चरणम कथाया, संशय वया विनोति खड्गज्ञम किम भक्ति जन परमहंस गतौ लभेत। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे नृसिंह देव, तत्ते हरतम नमः स्तुति कर्म पूजा, नमः मतलब नमस्कार, यह भी एक भक्ति का अंग है। पहला अंग प्रहलाद जी बता रहे हैं नमः, नमस्कार करने से, स्तुति आपका पाठ करने से, स्तुति करने से, प्रार्थना करने से, कर्म पूजा। कर्म पूजा का अर्थ है कि हमने जो भी भक्तिमयी कार्य किया उसके फल को भगवान के चरणों में निवेदन कर देना, समर्पण कर देना। फिर कर्म शब्द आया है उसी श्लोक के अंदर, उस कर्म शब्द का अर्थ है कि जो भक्त आपकी पूजा करता है, नमः स्मृति कर्म पूजा कर्मा स्मृति चरणायो, जो आपके चरणों का केवल स्मरण करता है, और श्रवणम कथायाम, और जो लास्ट में आपके विषय में आपकी कथा का जो श्रवण करता है वही व्यक्ति आपका प्रिय बन पाता है, अर्थात परमहंस के पद को वही प्राप्त कर सकता है जो ये 6 काम करता है, नमस्कार करता है, स्तुति करता है, अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है, भगवान की पूजा करता है और उनके चरणाभुज पर ध्यान लगाता है, और जो भगवान की कथा का श्रवण करता है। संशय वया त्वयि, इन 6 चीजों से जो आपको सम्यक रूप से सेवा करता है वही परमहंस गतौ लभेत, वही परमहंस के गति को प्राप्त करता है। अर्थात ये 6 काम करने से भगवान अति प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं, अर्थात भगवान अति प्रसन्न होते हैं। ये सब चीजों को पढ़ पढ़ करके एकांत में मनन करना चाहिए कि हम कहाँ पहुंचे। प्रहलाद जी ये पूरे अध्याय में शिक्षा दे रहे हैं कि या क्या वह शिक्षा हम लोगों के ऊपर लागू नहीं हो सकती? हम क्या उन असुर स्वभाव वाले बालकों से कम है क्या? सारी भावनाएं अगर भक्ति से ओतप्रोत नहीं है तो हम उनसे ज़्यादा हैं। इन सारे साधनों को प्राप्त होने के बावजूद भी इन पथ का हम अवलोकन करते हुए अनुगमन नहीं कर रहे हैं तो उनसे हम ज़्यादा हैं। ये चीज़ अब इस श्लोक के संदर्भ में भी प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं अब उसको हम लोग समझें। श्रील प्रभुपाद महाराज के प्रहलाद महाराज इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परमेश्वर की सभी प्रकार से सेवा करने पर कोई पूर्ण बन सकता है। सभी प्रकार से काय मनसा बपुसा, शरीर से, मन से और वाणी से। संन्यासी हमारे संप्रदाय में बनते हैं तो त्रिदंड लेते हैं, इन्हीं तीन चीजों को भगवान के सेवा में लगाने के लिए। काय मनसा और बपुसा, काय मतलब शरीर, मनसा मतलब मन, बपुसा मीन्स बाड़ी। ये त्रिदंड तीन चीजों का प्रतीक। इन तीनों को वश में करके जो भगवान की भक्ति में या भगवान को खुश करने में लगा है वही वो त्रिदंड धारण कर सकता है, संन्यास ले सकता है। ईश्वर प्रेम विकसित करने के लिए ब्राह्मण, देवता, ऋषि जैसे भौतिक उच्च पद कारण स्वरूप नहीं है, किंतु यदि कोई निष्ठापूर्वक भगवान की सेवा में लग रहता है तो उसकी कृष्ण चेतना पूरी हो जाती है। ध्यान दीजिए, शब्द है निष्ठा, फॉर्मालिटी नहीं कि प्रभु जी ने कह दिया, प्रभु जी का आज्ञा स्वरूप सर्वश्रेष्ठ है, हम उनको खुश कर लेंगे बस। उस सेवा के अंदर, उस निष्ठा के अंदर झांको कि गुरु भी प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं। इससे भगवान के भक्ति पथ से अब विपरीत रास्ता तो नहीं है जो हम केवल इनके आदेशों को ही पूरा करने में लगे। इन सब बाह्य आवरणों को ध्यान में रखते हुए निष्ठा शब्द यहां आया है कि केवल कृष्ण भक्ति, संसिद्धि हरि तोषणम, केवल भगवान को खुश करना है, न कि किसी को। इसकी पुष्टि भगवद गीता के अध्याय 9 के 30 श्लोक में होती है। अपि चेतस सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। इसमें मुख्य चीज है अनन्य भाव भजन करना। अगर कुछ उसके अंदर त्रुटि भी है तो अनन्यता के साथ भगवान की भक्ति करता है, भजन करता है, तो उस टूटी फूटी अनर्थ को भगवान दूर कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। भगवान का यह स्वभाव है कि अपने भक्तों के त्रुटि के ऊपर वो ध्यान नहीं देते, उसके तरफ उनका नजर ही नहीं जाता, ध्यान ही नहीं जाता। वो देखते हैं कि कितनी उत्सुकता के साथ वो मेरी तरफ आ रहा है, उस भाव को देखते हैं। साधु रेव च मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सर, केवल एक ही गुण के कारण उसके अवगुण पर ध्यान न देते हुए भगवान इस चीज उस भक्त को साधु मान लेते हैं, क्योंकि केवल अनन्य भाव से उनका भजन कर रहा है। उसके अंदर कुछ त्रुटियां भी है तो भगवान इसको स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं, यह मेरा भक्त है। भले ही कोई अत्यंत निंदनीय कार्य क्यों न करे, किंतु यदि वह भक्ति में लगा रहता है तो वह साधु माना जाता है, भगवान भी इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं। और एक ना एक दिन वह शुद्ध हो जाता है। इससे पिछले वाले श्लोकों को पढ़ेंगे आप लोग तो ध्यान से पता चलेगा। श्लोक नंबर शायद इसी अध्याय के 20वें श्लोक में प्रहलाद जी कहते हैं, आत्मा के 12 गुण बताए। आत्मा के 12 गुण बताने के बाद कहते हैं, उदाहरण देते हैं प्रहलाद जी असुर बालकों को कि हे मेरे मित्रों, जैसे सोना पत्थर के अंदर होता है, पत्थरों के बीच में होता है, और जो स्वर्णकार है, जो सोने को निकालने वाला है, वो व्यक्ति उस पत्थरों में से सोने को निकाल लेता है, वैसे ही जो 12 आत्मा के गुण हैं उन आत्मीय स्तर के ज्ञान को जो प्राप्त कर लेता है, वह शरीर के धरातल से अपने आप को ऊपर उठा करके एक मतलब स्वर्णकार की भांति वह सार तत्व को अर्थात भगवान को प्राप्त कर लेता है, वह भगवान का भक्त बन जाता है। केवल आत्मीय स्तर पर अपने आप को मानना कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन ये सब चीजें तब आएगा जब धीरे धीरे क्रमानुसार इन सब चीजों को हम अपने जीवन में स्वीकार करें। जीवन की पूर्णता इसी में है कि कृष्ण के लिए अनन्य प्रेम उत्पन्न किया जाए। अनन्य उत्पन्न प्रेम कैसे होगा? भक्ति ठहरती कहां है, वह रहती कहां है? तो साधुओं के हृदय में। भक्ति का खजाना या भक्ति के जो बंद करने का जो बक्सा है, केवल साधुओं का हृदय है। अपने हृदय में भक्ति को लेकर के वो विचरण कर रहे हैं। अगर उस हृदय के ताला को खोलना है तो साधुओं की संगति करो और भक्ति के खजाना को प्राप्त करो और अपने जीवन को अमरता को प्राप्त करो। भक्ति रुकती ही है केवल भगवान के भक्तों के हृदय में, और कहीं रुक ही नहीं सकती, उसका ठिकाना ही नहीं है। इसमें अन्य विधियां भी सहायक हो सकती हैं, किंतु यदि कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता तो अन्य सारी विधियां समय का अपव्यय है। कितने भी हम योग तपस्या ध्यान धारणा अष्टांग योग कोई भी साधन कर लें और उनसे भगवान अगर प्रसन्न नहीं है तो श्रम एव ही केवलम, केवल परिश्रम हाथ लगेगा। भागवत के पहले अध्याय के पहले स्कंध के दूसरे अध्याय के 8वां श्लोक में यह बात संपुष्टि की गई है कि धर्म स्वनिश्चितम पुंसम विश्वक्सेन कथा कथा कथासु यह नोत्पादेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। अगर विश्वक्सेन भगवान की कथा में अगर किसी की रुचि नहीं हुई और उनके चरणों से किसी कर्म को करने से प्रेम की उत्पत्ति नहीं हुई तो केवल हमारे हाथ परिश्रम लगा, कुछ मिला नहीं। खोदा पहाड़ लेकिन चूहिया भी नहीं निकली, कुछ भी नहीं निकला। परिश्रम किए इतना भारी, इतने बड़े बड़े तपस्या किए, यज्ञ किए, इतना समय हमने विद्वता को प्राप्त करने में लगा दिया लेकिन मिला कुछ नहीं। भगवान हमारे इन कर्मों से प्रसन्न नहीं हुए तो मिला क्या? इसके लिए तीन चीजों को ऐसे तो रूप गोस्वामी भी संकेत किए हैं, मन जिह्वा और हृदय। और यह स्थिति प्रभुपाद जी ने भी भागवत के श्लोकों के तात्पर्य में उन्होंने लिखा है और किसी संत ने भी अपनी कथा में बता रहे थे कि हृदय पे, जिह्वा पर, मन पे, जिह्वा पर और हृदय पर तीन चीजों की फैक्ट्री लगानी चाहिए। जिह्वा के ऊपर आइस बर्फ की फैक्ट्री लगानी चाहिए, जो वो ऐसी वाणी बोले जिससे भगवान प्रसन्न होवे, जिससे भक्त प्रसन्न होवे, ऐसी चीज ना बोले जिससे किसी के हृदय टूट जाए, भगवान के भक्ति से वो दूर होवे। इसलिए जिह्वा को 32 पहरेदारों के बीच में रखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये पार कर जाती है, पार करने का प्रयास करती है तो धातु से दबा देते हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ बोलती रहती है। इसलिए आइस की फैक्ट्री लगाओ, बर्फ की फैक्ट्री लगा दो जीव के ऊपर, बोले तो शीतलवाड़ी। और मन नहीं, मन ने, मैंने यह मन के ऊपर यह है, यह फैक्ट्री लगाना है मन के ऊपर, कि मन इतर उतर विचरण करते रहता है, इतना यह उद्वेलित होते रहता है कि वो बनी बनाई चीजों को बिगाड़ देता है। जीवा के ऊपर टीकाकारों ने लिखा है कि शुगर की फैक्ट्री लगाना चाहिए, क्योंकि जीवा को सदा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। मन के ऊपर जो फैक्ट्री लगाना है वो बर्फ की, जीवा के ऊपर फैक्ट्री लगानी है तो शुगर की, और हृदय के ऊपर प्रेम की फैक्ट्री लगानी है, क्योंकि हृदय प्रदेश में हमारे ठाकुर विराजमान रहते हैं। इन तीनों फैक्ट्रियों को हमें तीन अंगों पर स्थापित कर लेनी चाहिए और हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तब हम अपना संतुलन बना करके भक्ति के पथ पर हम चल पाएंगे। मैंने दो तीन श्लोक और कोट किया था, लेकिन समय अभाव है कि ये सब चीजें केवल भक्तों के ऊपर ही लागू होता है, नहीं तो आम व्यक्ति भी कह देता है यार अपने तरफ तो देख लो। क्योंकि अपने तरफ देखने का मतलब है कि तुम तो अपने वेशभूषा को तो देखो, हम कुछ कर रहे हैं कुछ भी हो उस पर ध्यान मत दो, तुम अपने तरफ तो झांको। साधु बनने के लिए इन सब चीजों को बहुत गंभीरता के साथ अपने पर लागू करना चाहिए, लेकिन यह होगी केवल भक्तों की कृपा पर निर्भर है, गुरु की कृपा पर निर्भर है। हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन गुरु हमारे सुसुरसया से सेवा से प्रसन्न नहीं है तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। गुरु नहीं खुश है तो भगवान कहाँ से खुश होंगे। गुरु प्रसन्नम सर्वशास्त्र दानम, गुरु जब प्रसन्न हो जाते हैं तो सारे शास्त्रों का जो निचोड़ भगवान है उनको ही वो दे देते हैं कि ले तुमको मैं भगवान को दे रहा हूं, तो भगवान को ले। और गुरु में शक्ति है कि वो भगवान को ऐसे उठा करके दे सकता है, ऐसे जगह हृदय के अंदर ले तू पकड़ ले, पकड़ने की क्षमता हो तो। आप सोचिए जिस भगवान को कोई मन से नहीं पकड़ पाता है, ब्रज के गोप बालक उनके कंधे पर चढ़ देते, उनको धक्का मारते थे, खेल से निकाल देते थे, किस कारण से उन्होंने इतना भगवान को पाया, इतना नजदीक रहा, केवल एक निष्ठता के स्तर पर पहुंचने के कारण, और कुछ नहीं, अनन्या भक्ति के कारण, और कोई साधन ही नहीं है कि हम भगवान को खुश कर ले। भगवान को किसी साधन की कमी है, किसी वस्तु की कमी है, अभाव है। हम लोगों के हृदय में जो अभाव है वो प्रेम का अभाव है, प्रेम नहीं है हृदय में भगवान नहीं है। इसलिए हृदय के अंदर प्रेम की फैक्ट्री लगा करके रखिए, कैसे भगवान खुश होंगे, ढूंढिए तरीका कि कैसे हम भगवान को खुश करें। नित्य प्रतिदिन यहाँ आकर के राधिका रमण जी के सामने प्रार्थना कीजिए, स्तुति कीजिए, प्रभुपाद को प्रणाम कीजिए, तो कहिए कि प्रभुपाद आप कृपा करो कि हम राधिका रमण को यथावत देख सकें, हम उनको यथावत उनके चरणों में कुछ कर सकें। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो कृष्ण निष्ठुर नहीं है, जितना भगवान दयालु है उससे ज्यादा दयालु गुरु होते हैं, भक्त होते हैं। अगर इनसे प्रार्थना करके उनके पास प्रार्थना करोगे तो डायरेक्ट वो लग जाएगा। अब देखिए ये हृदय के भाव को ही परिवर्तन करने के लिए प्रहलाद जी इतना बड़े प्रवचन दे रहे हैं अपने दोस्तों को ना, कि हे मेरे मित्रों तुम अपने स्वभाव को बदलो, अपने मन को इधर को मोड़ो और तुम मेरे जैसे भाव में आ जाओगे। उनका कहने का उद्देश्य यही था ना कि मन स्थिति को चेंज करो, दिशा को बदल दो, तुम भी हमारे जैसे भक्त बन जाओ। ये चीज ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की।